أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. آئیے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ ہمارے وقت میں برکت دے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دور قرآن 2025، ڈی کیو 2025. اللہ کی توفیق سے آج ہم پارہ نمبر 14 14 کریں گے. ربما یود الذین کفروا، اور حقیقت یہ ہے کہ پارہ بہت ہی خوبصورت ہے، ہر پارے کی طرح. اور خوبصورت ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ پیارے رب کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس کو ایک ہدایت نامہ تو بنایا. لیکن یہ صرف خشک روکھے سوکھے حقائق کا نام نہیں. جیسے کبھی کسی کو لاء کی کوئی بک پڑھنے کا موقع ملا ہو، یا آپ کو خود کوئی قانونی بات جاننی ہو تو کوئی کہہ دی فلاں جگہ جا کر پڑھیں، اتنی بوجھل باتیں ہوتی ہیں، اتنی خشک باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے جسوں کے تو اوپر سے گزر جائیں، دل نہیں لگتا. اس کا اندر کہ جو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں وہ بوجھل ہوتی ہیں. قرآن میں نصیحت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ گداس بھی ہے. خداوند ہے تو بشرا بھی ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو بالکل سن کر اپنا آپ لگتا ہے، جیسے صرف سمجھانے کی خاطر کہ کچھ لوگ ڈرامے کیوں دیکھتے ہیں کہ جی اس میں لائف ٹائم سٹوریز ہوتی ہیں، بڑے گھریلو ہوتے ہیں، اس سے یہ فائدہ وہ فائدہ. قرآن پاک میں سٹوریز بھی ہیں، ابھی تو پڑھ کے بیٹھے ہیں، زیادہ وقت نہیں گزرا ہمیں. احسن القصص، کیا سورت یوسف پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ آپ کی باتیں ہیں؟ آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے بھی پتہ چلتا ہے. اور ہر سال جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، اسپیشلی دورہ قرآن میں، اور نئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ قرآن جو ہے اتنا خوبصورت، اتنے پیارے طریقے سے ہماری زندگی کو ٹچ کرتا ہے، دل کے تاروں کو ٹچ کرتا ہے قرآن. اور جتنا زیادہ آپ اور میں ان چیزوں کو لیں گے انشاءاللہ خیر ہوگی. تو چلتے ہیں تھوڑا سا آج کے پارے میں سے، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں درود شریف. اور خاص طور پہ آج کا درود شریف ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں اور عورتوں کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہوگا. اللہم صلی علی محمد ولا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انک حمید و مجید. اللہم بارک علی محمد ولا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم ولی علی ابراہیم انک حمید و مجید. اللہ تعالی ہماری طرف سے کروڑوں رحمتیں اور خیر کی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، جنہوں نے انسانیت کو اندھیروں سے نکالا، کیونکہ وہ سراج منیرہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے، وہاں عورت ذات کی کوئی عزت نہیں تھی. آج بہت سارے لوگ ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ ویمن رائٹس کی بات کرتے ہوئے دکھتے ہیں، اور اکثر کچھ حد سے ہی گزر جاتے ہیں. اور پھر ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ اسلام نے تو عورتوں کو کچھ دیا ہی نہیں. پھر کچھ غیروں کی بولی بولتے ہیں، کچھ لوگوں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کیا کہتے ہیں کہ جی اسلام تو عورت کے خلاف ہے، ڈسکریمینیشن ہے، مرد کو یہ عزت دی، اس کو وراثت میں حصہ دیا. الٹی باتیں ہیں، صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنی سنائی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بے تکی بے کار قسم کی. اور پھر اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے، چلے دوسرے تو کہہ ہی دیں، کوئی بات نہیں ہے، ان کا تو کام ہے کہنا. ان کی دیکھا دیکھی اپنے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا حق دیے؟ اللہ نے آپ کے ذریعے سے کیا دیا؟ میں تو ایک لفظ کہہ دوں، باقی پھر جہاں موقع بنے گا بات کریں گے. اور وہ کیا ہے کہ اسلام نے عورت کو سب سے پہلا حق جینے کا دیا، جینے کا حق دیا. کیونکہ عورت تو ماں کی پیٹ سے نکلتے ہی ایک بچی ہونے کی صورت میں زمین کے پیٹ میں ڈال دی جاتی تھی، جو اس کی قبر ہوتی تھی. تو آپ اندھیروں میں روشنی بنے. اور آج ہم چاروں طرف کتنا غلغلہ دیکھتے ہیں اس چیز کا، جی ویسٹ نے عورت کو بڑے حقوق دیے، ویسٹ والے یہ کرتے وہ کرتے. یہ سب چیزیں ایک سائڈ پہ کر کے آج انشاءاللہ پورے پارے کے دوران جہاں بھی موقع بنا، ہم جس تھیم کو، جس موضوع کو دیکھیں گے اس پارے کے اندر، وہ کیا ہے जिसको हमारे कल्चर में एक बड़े खूबसूरत शेर के साथ मिलाते हैं, और वो क्या है, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग। पारे के ऊपर अगर एक नज़र डालकर हम देखें तो इसमें हमें सूरत हिजर की इब्तदा से यानी आयत नंबर 2 से दिखेगा। ज़रा से इस पारे के मजामीन को नोट कर ले, जितना कर सका करें, लेकिन असल में ये आपके लिए एक इंडेक्स बन जाता है कि आज की बात सुनने के दौरान हम इन्हीं चीज़ों के लिए तैयार होंगे। तो पहली चीज़ 14 नंबर पारा में आएगी, वो है कुफार की तमन्ना, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। फिर दूसरा मजमून आएगा हिफाजत कुरान, आयत 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ुन। फिर तीसरा इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और मकसद तख्लीक, आयात आप खुद ही बाद में देखेंगे इंशाल्लाह बारे में। अगला मौजू इस बारे में आएगा अहले जन्नत का जिक्र, और फिर असहाबो हिजर। सूरत का नाम हिजर है, ये कौम समूद का दूसरा नाम है, ठीक है, पत्थरों वाली कौम। फिर इसकी बाद आज आपको पता चलेगा कि सूरत फातिहा को कुरान अजीम क्यों कहा गया, आज बड़ी प्यारी आयत आने वाली है इसकी। फिर अलल एलान तबलीग का हुक्म, आज के बारे में वो आयत है कि जिसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने ओपन, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि खुलेआम दावत देनी शुरू कर दी थी। फिर पूरी जिंदगी को इबादत बनाने का हुक्म, यह हमें सूरत हिजर के आखिर में मिलेगा। और उसके बाद जो मेन चीज़ हम आज इस बारे में पढ़ने वाले हैं वो सूरत नहल है। नहल शहद की मक्खी को कहते हैं, इस सूरत में शहद की मक्खी का जिक्र है, इसीलिए शायद इसको नहल कहते हैं। इस पूरी सूरत में बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं, यही आज के थीम के अंदर है। पहली चीज़ क्या है, प्रोडक्टिविटी, वी शुड बी प्रोडक्टिव मुस्लिम, प्रोडक्टिव मुस्लिमा। प्रोडक्टिव को उर्दू में कह लें तो वो बनना है कि जो कुछ दे कर जाए इंसान के फ़ायदे के लिए, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करके मुशरिकीन को तौहीद की दावत दी गई, यानी कायनात के छोटे छोटे उस्ताद आपको इस सूरत में दिखेंगे, ख़ास तौर पे शहद की मक्खी, कि जिसको अल्लाह ने एक सुई के नाके के बराबर का सर दिया, और उसमें अक्ल कितनी को हो सकती है, लेकिन वो इंसानियत को शहद जैसी खूबसूरत चीज़ अता फरमाती है, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको ये दिया, इसको हम इंशाअल्लाह ताला आज इस पारे के साथ देखेंगे। फिर इसके बाद इंसान की तख्लीक और नाशुक्री, कि इंसान की तबीयत में शुक्र कम ही है। फिर अल्लाह ताला के कुछ इनामात का जिक्र है इस सूरत में, आपको ऐसे लगेगा आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपके सामने से मंजर गुजरते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर विद इन यूरोप जब एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सीनिक व्यूज़ हैं, बल्कि कई सीनिक ट्रेन्स भी आती हैं, और अगर फितरत के साथ थोड़ा सा शगफ हो तो वहाँ अल्लाह ताला से ऐसी कुर्बत महसूस होती है जैसी अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुरान को पढ़ते हुए और हरम में जाकर तवाफ़ करते हुए होती है, क्योंकि जब हर चीज़ आपके अल्लाह ताला के इर्द गिर्द घूमती है ना, तो फिर बंदा मोमिन के लिए तो ये कायनात भी एक किताब है, और कुरान तो है ये किताब। फिर इसमें समंदर के फवाद दिखेंगे, मुतकब्बिरीन इतना कुछ देख कर भी नहीं मानते, इसलिए उनके कुछ एतराजात है, कहते थे आउटडेटेड किताबें हैं, असातीरुल अव्वलीन, ये आज क्या 2025 में तुम 1500 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हो, आज भी कई लोग ऐसी टोन में बात करते हैं। इसी तरह कुछ मुत्तकीन से सवाल जवाब हैं, और ख़ास तौर पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में शुबे डालते थे उनकी बातें हैं। और फिर पारे के थीम के साथ बच्ची की पैदाइश पर मुशरिकाना माहौल क्या था, आयत 58 में, इंशाल्लाह इस पे मज़ीद थोड़ी बात हम करेंगे कि वह बुशरा हदुहुम बिलुनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, यानी अल्लाह के तो बेटे गढ़ते हैं और अपने लिए क्या करता है, और कुछ मुशरिकीन कबाइल जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, तो उन सबका भी तذکرہ है। फिर इसी तरह बहरहाल सूरत के एंड तक कुछ और इनामात हैं अल्लाह के, और फिर गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। क़यामत के दिन के कुछ मंजर हैं कि आप सबको गवाह बनाकर पेश किया जाएगा, और फिर इस बारे में आपको जामे तरीन आयत मिलने वाली है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसानी, जिसको पूरे इस्लाम का खुलासा कहा जाता है, तीन बातों के करने का हुक्म और तीन चीज़ों से रुकने का हुक्म। और हर जुमा खुतबा में हमारे मर्द हजरात ये आयतें सुनकर आते हैं, अल्लाह करे कि समझ भी आने लगे। फिर मनसूख और नासे की कुछ बातों के बाद इसमें एक बहुत ही प्यारी बात है कि इकराह, मजबूरी में जो गुनाह कराए जाते हैं या बंदा किसी के हाथों मजबूर होके गुनाह करता है उसका क्या होगा। बड़ा प्यारा वाक्या है इस अम्मार बिन यासिर का, कि जिससे पता चलता है कि मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमईनुन बिल ईमान। तो अल्लाह करे कि हम लोग सारी चीज़ों का इहाता कर सके, और फिर दोबारा इब्राहिम अलैहि सलाम का जिक्र पारे के एंड की तरफ, जिसका आप कह सकते हैं इमामुल मुवहिदीन, उन पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में क्या नेमतें की। और पारा और सूरत जिस मजमून पे जाती है, अल्लाह करे सारा वक्त बचा के उस पे ले जाऊँ। और वो है दावते दीन के तरीके, वो दो इला सबीली रब्बी कबिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, वो दीन की दावत दे तो रहे हैं, अल्लाह उनसे कबूल भी कर रहा है, और लाखों करोड़ों तक बातें जाती है, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं आटे में नमक, कि वो दावत के नाम पे ताने देते हैं, दावत के नाम पे लोगों को मजीद गुनाहगार कर देते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम उन चीज़ों को देखेंगे तो हमें तीन चीज़ें समझ आएंगी। नंबर एक, दलील से बात करें, और दूसरी बात है कि फजाइल और तरगीब भी दें, और साथ साथ तरहीब भी हो, यानी उम्मीद भी दिलाएं और खौफ भी दिलाइए। और अगर शुबहात पेश किए जाएं तो उनको अच्छे अंदाज से रद्द करना सीखें। और इसी तरह से आपके मेरे दो काम हैं, नंबर एक उम्मत को ईमान और अमल पर लाना, और उम्मत के ईमान और आमाल को बचाना। दो बातें हैं, पहले लाना है लोगों को नेकियां करने पे, रग़बत दिलानी है, और फिर जो किए हैं उनको ज़ाया भी ना कीजिए, क्योंकि उम्मत ईमान और अमल पर आती है फजाइल से, और उम्मत का ईमान और अमाल बचता है दलाइल से। शुबहात का रद्द करने से तबलीग वालों के ज़िम्मे लाना है, और अल्लाह करे तो फिर हम सब ज़िम्मा इस चीज़ का लेंगे कि हमने ना सिर्फ इस कुरान को पढ़कर अपने बल्कि दूसरों के अमाल को बचाना भी है। अब ये सारी तमहीदी बातें सामने रखते हुए आगे चलते हैं, और पिछले पारे से इसके रब्त को। पिछला पारा हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं के खूबसूरत इजहार से मिला था, और फिर पारे के बिल्कुल आखिर में कुफ्फारे मक्का का किस तरह नबी सल्लम की मुखालफत करना था, और अल्लाह ने फिर जहन्नमियों की कुछ ऐसी कैफियत बताई थी कि मुकर्रनीन फिल अस्वाद, जंजीरों में चेनों में जकड़े हुए पेश किए जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया में नहीं मानते थे। कुछ बातें अल्लाह ताला पर शक की थी। इस बारे के शुरू ही में आप देख लेंगे, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू, जिससे आपको पता चलेगा कि क़यामत के दिन कुछ लोग बहुत ही हसरत कर रहे होंगे कि काश हम दुनिया में कोई नेकी कर जाते। इंशाल्लाह से इसको लेकर चलेंगे। चलते हैं मोहम्मद अरबी पे। दुरूद शरीफ दिल में मोहब्बत के साथ पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा पीछे से कंटिन्यू होता है, कि तामीरे काबा के दौरान हजरे अस्वद की तंसीब के मौके पे होने वाले एक झगड़े और एक ऐसी चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत अमली से रोक दिया, कि जिसको देखकर आज के दौर में अगर आप और मैं देखें तो पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा क्या पूरी दुनिया में आज भी कई इश्यूज खड़े हैं, कई बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अगर आज का मुस्लिम हुक्मरान, आज का कोई वर्ल्ड लीडर पूरी दुनिया में इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिकमतें सीख ले, आज इंसानियत के साथ बेहतरीन मामला करे, तो कई चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। आपको मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से इस चीज़ को समझने में तो कोई शुबा नहीं महसूस होना चाहिए कि आप हकीकत में इंसान दोस्त हैं। मुआशरों में अमन पसंद है, इस्लाम ही अमन देता है, इस्लाम ही बेहतरीन तरीके से लेता है। तो आइए ज़रा थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं, कि कैसे आपकी इन्वॉल्वमेंट के साथ अल्लाह सुबहाना तआला ने एक होने वाले बहुत बड़े झगड़े को पीछे डलवा दिया, और अल्लाह करे कि हम भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बारे पे चलते हैं इस शौक़ के साथ, इस ज़ौक़ के साथ, कि अल्लाह ताला हमें इससे बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। पारा शुरू होगा सूरत हिजर की आयत नंबर 2 से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तौ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यालमून। वो वक्त भी होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरजू करेंगे, आप इन्हें खाता, नफा उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता छोड़ दीजिए, ये खुद भी जान लेंगे। हसरतों के साथ चेपारा शुरू हो रहा। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि कई बार उन तक इस्लाम पहुंचा और पहुंचाया गया, लेकिन उनके कान पे जूं तक न रेंगी। कई हालात और वाकयात ऐसे हुए कि जिसको देखकर वो इस्लाम कबूल कर सकते थे, लेकिन पीयर प्रेशर ने उनको रोक दिया और नतीजा क्या निकला कि वो अपने आप को दोबारा बाप दादा के दीन पे ही रखते हैं। क्यामत का दिन होगा। कई वाकयात हैं आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से कि जब लोग अपनी सजाओं को भुगत कर बिल आखिर जन्नत में जाएंगे, और वो कौन से लोग होंगे? वो उम्मते मुहम्मदिया के गुनाहगार लोग होंगे। यहाँ भी गौर से सुनने की बात है। ये जो हम कहते हैं ना कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक जुमले के साथ अगर इस सेंसिटिविटी को महसूस करवाना चाहूँ तो कुछ मुसलमान बिल आखिर जन्नत में जाएंगे, वो जहन्नम के ऊपर से गुजार कर जन्नत में भेजे जाएंगे। वह मिन को मिल्ला वारी दुआ, आगे सूरत मरियम में हम पढ़ने वाले हैं, एक आयत आने वाली है कि तुम में से हर एक जहन्नम के ऊपर से गुजारा जाएगा। क्या पता चला कि जहन्नम के ऊपर एक पुल है जिसको पुल सरात कहते हैं, वहां से गुजार कर हर एक को या जन्नत या जहन्नम में भेजा जाएगा। उस वक्त वो लोग जिन्होंने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की, मुआशरे से डर गए, जिनके अकायद में कोई खराबी थी, जिनके मामलात में कोई ऐसा बड़ा बिगाड़ था कि जहन्नम की कोई ना कोई उनको जरूरी हवा खानी थी, तौहीद और शिर्क के अलावा कुछ ऐसे मामलात थे कि जो उनके सामने मौजूद थे, लेकिन वो उससे फायदा नहीं उठा पा रहे थे कि इस्लाम की रहनुमाई को ले, तो फिर ऐसे लोगों को कुछ अरसे के लिए जहन्नम में फेंका जाएगा। बहुत ही खौफजदा करने वाली बात है। टू बी मुस्लिम इज नॉट टू बी सेफ फ्रॉम हेल फायर 100%। तो ऐसे लोग बिल आखिर फिर अल्लाह जितनी देर उनको सजा दे, आज की जुबान में आप कह सकते हैं कि कैद भुगतेंगे। हर जुर्म की एक डिफरेंट कैद होती है। दुनिया में भी हर मुल्क में कवानीन में यही बातें आप देखते हैं कि इस जुर्म के बाद 6 माह की सजा है, इसकी इतनी है। अल्लाह माफ़ कर दे, वो मालिक है। मैं और आप इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं कर सकते, किसी को किसी की सिफारिश अल्लाह के फैसले को बदल नहीं सकती। हाँ, कुछ सिफारिशों की वजह से अल्लाह ताला सजा कम करा दे, या जहन्नम में डलने के बाद निकाल दे, या जाते जाते बीच में रोक ले, ये एक अपनी जगह मजमून है, लेकिन इस आयत को महसूस कीजिए। उलमा कहते हैं कि कुफार की ये हसरत या तो दुनिया में इस्लाम की तरक्की को देख के होगी, और आज इसके हालात शुरू हो चुके हैं। आज दुनिया में 0% इंटरेस्ट पे लोग आ गए। आज अक्सर दुनिया के लोगों को पता है कि इस्लाम के बेसिक क्रीड्स क्या हैं और इसकी बरकतें और इसकी खूबियां आज वेस्ट पे तो खुलनी शुरू हो गई है। उनको समझ आ गई है कि इस्लाम ने एक औरत को जो प्रोटेक्शन दी है वो हम नहीं दे सके। आज कितनी ही नॉन मुस्लिम खवातीन हैं जो वो इस शादी के लिए एक मुसलमान मर्द को ढूंढती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि ये अच्छे शौहर साबित होते हैं, ये काम नहीं करवाते, और बल्कि ये हमारे टेक केयरर हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि अल्लाह ने उनको कवाम बनाया। तो ऐसे वक्तों में, और इसी तरह से ज्यादा राय उलमा की क्या है कि ये आयत जिस वक्त को पेश करती है वो वक्त कौन सा है? जिस वक्त लोग जहन्नुम से निकल रहे होंगे। और हदीस याद रखिए कि जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर तकबर हुआ वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। ये हदीस आप सबको बचपन से सुन सुनकर याद हो चुकी होगी। इसी तरह याद रखिए, जिसके दिल में एक जर्रा बराबर ईमान भी होगा ना, वो बिल आखिर जहन्नुम से निकाला जाएगा। यानी ये टू वे समझिए, एक जर्रा बराबर तकबर है तो जन्नत में नहीं जाना। इतना बड़ा दीमक, इतना बड़ा वायरस है तकबर, क्योंकि तकबर ही तो शिर्क को लाता है, तकबर ही तो आगे से अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अपनी मर्जियां करना सिखाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर दिल में एक जर्रा बराबर नेकी का जज्बा है, या कह लीजिए कि खैर है और ईमान है और तौहीद है, तो ऐसे जो लोग हैं वो भी अल्लाह की तौफीक और रहमत से बिल आखिर फिर जन्नत में डाल दिए जाएंगे। तो आप जरा अपने ऊपर लीजिए, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। लोग जिस चीज़ की ख्वाहिश और हसरत कर रहे हैं, अगर वो अल्लाह ताला आपको मुझे बिन मांगे दे रहा है, तो अपने इस्लाम पे कहिए अल्हम्दुलिल्लाह नेमतिल इस्लाम, अला नेमतिल कुरान। हमें तो बोनस में मिल गई। किसी ने कहा वी आर मुस्लिम बाय चांस और वी आर मुस्लिम बाय चॉइस। मैं कहती हूँ कि हम चांस पे यकीन नहीं रखते, तुक्केबाजी इस्लाम में नहीं है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के फैसले से होती है। तो लिहाजा अल्लाह ने आपके मेरे माँ बाप को इस्लाम पे रखा, दिल से शुक्र अदा कीजिए। आज वो लोग जो रिवर्ट होते हैं ना, हम कई दफ़ा उनको देखते हैं अपनी आंखों से, फूट फूट के रोते हैं, उनके दिलों में दर्द होता है अपने पेरेंट्स के लिए, वो चीखते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम लोग तो अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हो, हम तो दुआ भी नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी एक स्ट्रसल में गुजर जाती है, और जब माँ बाप में से कोई एक मर जाता है तो इस्लाम का कानून लागू हो जाता है कि अब आप उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। तो अब ज़रा अपने ऊपर लेकर सोचिए। आगे देखते हैं आयत नंबर 4 से, वमा खलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम, किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि इसके लिए एक लिखा हुआ वक्त था, मुकर्ररा नविश्ता था, कोई गिरोह अपनी मौत से ना आगे बढ़ता है ना पीछे रहता है। याद रखिए जैसे हमारी इनफरादी ज़िंदगी और मौत है ना, इस तरह कौमों की भी मौत का कुछ वक्त होता है और वो सदियों पे उनकी ज़िंदगी मुहित होती है। उन्होंने कहा ऐ वो शख्स, ज़रा अंदाज़ को नोट कीजिएगा, पहले तो कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को महसूस कीजिए, और फिर सुनिए, अगर दिल पे चोट पड़े ना तो समझ लें कि नबी से मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई ईमानदार हो नहीं सकता जब तक मैं उसको उसके बाप, उसके बेटे और कई रिश्ते अपने मुख्तलिफ रिवायात से जो मिलते हैं वो गिनवाए कि मैं तुम्हें सबसे प्यारा ना हो जाऊं। बाप को जहन में ले आए तो आपको बाप की मोहब्बत महसूस होती है ना। अब इसी चीज़ को रखिए जरा कि अल्लाह के नबी को क्या कहते थे, वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नक लमजनून, ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है यकीनन तू तो कोई दीवाना है। आपको कोई मजनू कह दे बड़ी महफिल में, आप मुझे ही कह दें आप तो दीवानी लगती हैं, आप तो कुछ भी मेरे लिए नाम बोल दें, कैसा लगेगा मुझे? और जिसको मुझसे मोहब्बत है उसको कैसा लगेगा? हमारे नबी को लोगों ने मजनून तक कहा, टॉन्टिंग स्टाइल है, तौहीन रिसालत कर रहे हैं लोग, आपके मुंह पे आकर ऐसी बातें कर जाते थे, इसमें तो शिद्दत और भी बढ़ जाती थी। और साथ ही एटीट्यूड देखे, लव माता तीन बिल मलाइका, अगर तू सच्चा ही है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता? हम फरिश्तों को हक के साथ ही उतारते हैं और इस वक्त वो मोहलत दिए गए नहीं होते। ये अल्लाह जवाब दे रहे हैं नबी के दिफा में। और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। यह है वो आयत जिसने कुरान को पिछली किताबों से अलग कर दिया। याद रखिए अल्लाह ने ना तो तौरात, ना इंजील, ना ज़बूर और ना किसी और इल्हामी किताब के लिए यह आयत दी जो कुरान के लिए दी है। यह है वो आयत जिसमें हदीस की अहमियत भी है, और दूसरी बात यह है कि कुरान पाक को आज तक अल्लाह ने कैसे प्रिजर्व किया हुआ है। पिछले इस पारे में हमने एक आयत पढ़ी थी, अफिल्लाह ही शक्कुन, बिल्कुल सूरह इब्राहिम के शुरू की आयत थी। क्या ये अल्लाह के बारे में शक करते हैं? क्या इनको अपनी माओ पे शक है जैसे अल्लाह पे शक करते हैं? इस आयत को ज़रा सा समझ लीजिए ताकि आपको थोड़ी बातें समझ आ जाएं पिछले पारे के साथ भी, कि हमने पिछले पारे में शैतान की एक तकरीर भी सुनी थी, कैसे वो वहां खड़े होकर सबके बीच में आकर बोल रहा था कि मैंने तुम्हें जो कहा था, तुम्हें किसने कहा था कि तुम इसको जरूर मानो, मैंने जो कहा था वो झूठ था। यानी अपने ही बारे में खुद कह रहा है कि मैं कौन सा सच्चा इंसान हूँ। आज इस बारे में इस आयत से अल्लाह ताला आपको मुझे ये बात बता रहे हैं कि ये कुरान एक महफूज किताब है। आज तो पीडीएफ भी एडिट हो जाता है, आज से कोई 10 साल 5 साल पहले जब बातें होती थी तो पीडीएफ का लफ्ज़ हम बोलते थे कि उसको एडिट नहीं किया जा सकता ना, उसके अंदर चेंजेस नहीं होती थी, वो एक सील कॉपी होती थी। या अगर प्लास्टिक के रैप में किसी कागज़ को अगर आप डाल देते हैं तो फिर उसमें क्या होता था कि वो सेव हो जाता था। कुरान के लिए आप कोई मिसाल समझ लीजिए, कुरान का एक जबर, एक जेर भी तब्दील नहीं हो सकता। जब से ये किताब अल्लाह की तरफ से आई आज तक और कयामत तक इस किताब में कोई चीज चेंज नहीं होगी। जब ये बात हम दावा के दौरान नॉन मुस्लिम्स को बताते हैं ना तो कहते हैं वाह। अब देखिए हर जुबान ज्यादा से ज्यादा कहते हैं 100 साल तक जीती है। पुरानी इंग्लिश देख लीजिए, शेक्सपियर के नावल खोल लीजिए, आपको समझ ही कोई नहीं आना है। पुरानी उर्दू देख लीजिए, फुसा उर्दू देखिए, मिर्ज़ा गालिब की शायरी देख लीजिए, अल्लामा इकबाल की शायरी देख लीजिए, आज आपके बच्चों के कानों के ऊपर से गुजर जाती है। कुरान 1400 साल पुरानी किताब, एवर न्यू। अल्लाह का शुक्र है ये मेरी ज़िंदगी का 24वां दौरा कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो आज भी नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं पुराना लगा। किसी जगह अटक के कभी आपको महसूस हुआ कि ये अरबी कौन सी है, ये समझ तो नहीं आ रही, बल्कि आज की स्पोकन अरबी बदल गई। मैंने इजिप्ट में जाके देखा कि वहां तो वो गाफ बोलते हैं, मस्जिद नहीं बोलते। अब जीम खत्म कर दिया, मस्जिद कहते हैं। यहाँ अरब मुल्क में आप लोग भी अगर कई अरबों से आपका हो तो जो स्पोकन अरबिक है वो बहुत फर्क है कुरान से। कुरान 100 फीसद से समझ आता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब बोलते हैं तो उसमें मैं कई जगह पे अटक जाती हूँ कि ये क्या लफ्ज है, बाद में समझ आता है कि ये तो इन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। तो वो अरबी भी बदल गई, जो इनके फोर फादर्स की अरबी थी आज इनकी औलादें डिफरेंट अरबी बोलती हैं, लेकिन कुरान नहीं बदला। ये रब का गुलाम है, और अल्लाह ने इसको महफूज क्यों किया? क्योंकि नबी की शरीयत को महफूज करना था। और जिक्र के लफ्ज से पता चलता है कि एक रिमाइंडर भी है, कुरान एक याद भी है। इसको पढ़ते हुए अल्लाह याद आना चाहिए। इसको कई जगह हदीस के साथ भी लिया जाता है। इसकी तफसीर का इस वक्त मौका नहीं, लेकिन बस इतनी बात कह दीजिए अपने आप को, मुबारक हो मुझको, मैं इतनी प्यारी किताब पढ़ रही हूँ। आप पर मैं इस वक्त ये वक्त किसी और फिक्शन पे लगा रहे होते तो जाया हो चुका होता। अल्लाह ना करे किसी और मजहब के पैरोकार होते और अपने इतिकाद के मुताबिक उनकी को किताब पढ़ रहे होते, हम उस पर भी बहुत खुश होते। हजरत उमर ने एक दफा किसी गिरजे में एक प्रीस्ट कह लीजिए बड़े इतपाक से उसको अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते, सलीब की पूजा करते देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। कामिलतुन नासिबात, इनको इन कामों की मेहनत की मजदूरी तो नहीं मिलनी, तो दर्दमंद दिल तो रोता है। हाय तुम किस चीज़ पे वक्त लगा रहे हो? हर मजहब के अपने कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ शायर है वो उस पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको मुझे अल्लाह ने उस किताब की खिदमत के लिए चुना इस वक्त, जिसका अजर सिर्फ अल्लाह देगा। अगर आपको कभी किसी चीज़ के लिए मुश्किल लगे, आना मुश्किल, बैठना मुश्किल, जाना मुश्किल, हाय अब बस काफ़ी है, ये क्या हो गया, कर तो रहे हैं, मुश्किल तो लग रहा है, तो उस वक्त एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आपको किसी मुल्क के किंग की कोई सर्विस मिल जाए, किसी सुपर पावर जिसको लोग कहते हैं, अगर उनकी कोई आपको जॉब मिल जाए, आपके मियाँ को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे दावत मिल जाए, तो आप क्या खुशी से नहीं करेंगे? उछलते कूदते जाएंगे, उल्टे पाँव जाएंगे, लोग क्या है हमें उन्होंने बुलाया, हम उनके खादे में। तो यही चीज़ें आपको यहाँ समझ आ रही हैं। और इस किताब के इस लफ्ज़ को समझते हुए कितनी बात भी याद रखिएगा कि रब्बे कायनात ने ये कायनात बनाई। कायनात में जो है ना उसको लॉ ऑफ नेचर्स कहते हैं, ये सूरज चांद सितारे ये पूरा एक सेटअप है। इसी तरह ये कुरान जिसको हम इस वक्त देख रहे हैं ना, ये लॉ ऑफ शरिया है, यानी शरीयत के कवानीन, शरीयत और तबई कवानीन। जैसे पानी ठंडा होकर जम जाता है, पानी को बॉयल करते तो धुआं आता है, तो ये साइंस है। जो जिस रब ने लॉ ऑफ नेचर बनाया है ना, उसी रब ने लॉ ऑफ शरिया बनाया है। अब लॉ ऑफ नेचर अगर इंसानों के फायदे के हैं तो सोचिए कि फिर ये शरीयत हमारी क्यों नहीं इंसानों के फायदे की? तो मोहब्बत से कहिए कि अल्लाह हम तेरे इस नाजिल करदा कुरान पे भी राजी हैं और तेरी दी हुई इस पूरी नेमत पे, अल्लाह पे मुकम्मल ट्रस्ट कीजिए। ये पारा आपको ये दिखा रहा है कि शक दूर कर दो, रब वही है, क्योंकि इसमें आपको इतना ज्यादा तौहीद के दलाइल मिल रहे हैं और आगे मिलने वाले हैं बहुत सारे। तो जैसे हजरत इब्राहिम को अपने रब पर पूरा ट्रस्ट था ना, अल्लाह के कहने पे अपने न्यू बॉर्न बेबी, नौमलूद बच्चे को छोड़ आए थे एक गैर आबाद जगह पे। अगर हम उनकी जगह पे होते तो क्या कहते? ये पारे कैसा रब है आपका? पिछले पारे में पढ़ा कि इब्राहिम अल्लाह के एक इशारे पे अपने बीवी बच्चे को छोड़ा जाकर गैर अजीज अरे, आज के मक्का और उसके मक्का में जमीन आसमान का फर्क होगा। आज तो अकेला भी चला जाए तो घूमता नहीं, अल्लाह ताला उसको कहीं ना कहीं से मिलवा ही देगा। तो वहां तो था ही नहीं, शेर भी हो सकते थे, कोई जानवर भी हो सकते थे जंगली, लेकिन एक इब्राहिम जैसा ईमान रखने वाला शख्स जब वहां अपने बच्चे को छोड़ आता है, हम होते तो ऐसे मौके पे प्रोज एंड कॉन्स तोलते, प्लस माइनस देखते और वसवसों में ऐसे शिकार होते, वो जिनको वसवसे आगे वो नहीं मंजिल पे पहुंचते। उस दिन इब्राहिम के लिए आसान नहीं था, आज आपके लिए अगर किसी नेकी को करना मुश्किल लगे तो उनको याद करें। देखिए ना तो हर नेकी आसान होती है और ना हर नेकी मुश्किल होती है, नेकी अल्लाह का हुक्म होती है, ये कुरान आपको सिखा रहा है। और इसी को पढ़ते सुनते वक्त आपने मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि इस जिक्र के लिए हमारे दिल खोल दे। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ ये कुरान, ये रब का कलाम उसके बंदों के नाम है।